नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी गवाहियां और आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे अन्य मित्र भी इसी प्रकार से अपनी आशीषों को पत्र के द्वारा से और फोन के द्वारा से हमें जरूर ही जानकारी देंगे। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इसके परिचय अर्थात पृष्ठभूमि को देखा और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक अध्याय उसके दो पद से। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम दानियल नबी की पुस्तक से आपके वचन को सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। पिता परमेश्वर, उन पर कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, आप उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें, ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए, आपको महिमा देने पाए। आज के अध्ययन पर आप अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम दानियल नबी की पुस्तक से अपने अध्ययन को कर रहे हैं। यहूदा का राजा यहोयाकीम मिस्र के राजा नीको द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था। उसका पिता योशिय्याह एक धर्मी जन था, परंतु यह एक दुष्ट राजा था। लगभग 606 ईस्वी पूर्व में नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर चढ़ाई की और दानियल तथा उसके तीन साथी और हजारों यहूदा वासियों को वह बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया, परंतु यरूशलेम को हानि नहीं पहुंचाई। यहोयाकीम के बाद उसका पुत्र यहोयाकीन सिंहासन पर बैठा। उसने नबूकदनेस्सर से विद्रोह किया और लगभग 598 ईस्वी पूर्व में नबूकदनेस्सर ने आकर यहोयाकीन, उसकी माता और अनेकों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। इस दल में भविष्यद्वक्ता यहेजकेल भी था। इस बार भी नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को हानि नहीं पहुंचाई अर्थात ध्वंस नहीं किया, परंतु परमेश्वर के भवन के पात्र को वह ले गया। अब यहोयाकीन का चाचा सिंहासन पर बैठाया गया। उसने भी नबूकदनेस्सर से विद्रोह किया और परिणाम स्वरूप उसके पुत्र उसकी आंखों के सामने घात किए गए अर्थात मार डाले गए, उसकी आंखें निकाल ली गई और यरूशलेम तथा परमेश्वर का भवन उजाड़ कर ध्वंस कर दिया गया और लगभग 588 से 587 ईस्वी पूर्व में यर्मिया 25 अध्याय उसके 8 से 13 पद की भविष्यवाणी के अनुसार सब कुछ नष्ट कर दिया गया और अयोग्य एवं विकलांगों को छोड़कर संपूर्ण प्रजा बंधुआई में ले जाई गई। केवल यर्मिया के साथ भला व्यवहार किया गया था। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। ध्यान दीजिए, इस समय कुछ ही पात्र परमेश्वर के भवन से निकाले गए थे। परमेश्वर के भवन के शेष पात्र यहोयाकीन के समर्पण के समय दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 13 पद में हम पाते हैं, जहां पर ये लूटे गए और नबूकदनेस्सर के देवता के भवन शिनार में पहुंचाए गए। हमें यह स्मरण रखना है क्योंकि आगे चल करके हम देखेंगे नबूकदनेस्सर का पोता इन्हीं पात्रों में अपने भोज की मदिरा को पिएगा। दानियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इसराइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। नबूकदनेस्सर की नीति थी कि जिस देश को वह जीते वहां से बुद्धिमान मनुष्यों को बंदी बनाकर ले आए और उन्हें परख कर राजा के दरबार में सलाहकार बनाया जाए। हम देखेंगे कि दानियल को भी चुना गया था और वह राजा का सलाहकार था। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी। पद 9 में लिखा है, परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। यशाया की पुस्तक 39 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजमहल में रहेंगे। इससे भविष्यवाणी की पूर्ति में दानियल और उसके 3 साथी खोजे बनाकर राजमहल में रखे गए। अतः आप समझ सकते हैं कि दानियल ने क्यों विवाह नहीं किया था। राजा ने यह आज्ञा दी थी, परंतु इससे उनके मानसिक विकास पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था। वह इसलिए किया जाता था कि वे राजा के प्रति अधिक आज्ञाकारी बने और अपने अध्ययन में पूरा समय दे पाए। आज भी कॉलेज के अध्ययन में विद्यार्थी बहुत समय लड़कियों के साथ गंवाते हैं, अर्थात अधिक समय व्यर्थ में चले जाते हैं, जबकि यही समय यदि वे अध्ययन में लगाएं तो अधिक लाभ होगा। नबूकदनेस्सर चाहता था कि वे अपना ध्यान अध्ययन में लगाएं, इसलिए उसने उन्हें खोजा बनवा दिया। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के लेखक अज्ञानी नहीं थे। मूसा के पास मिस्र का संपूर्ण ज्ञान था, मिस्र वासियों के पास ज्ञान का भंडार था। वे सूर्य की दूरी जानते थे, वे जानते थे कि पृथ्वी गोल है। वे अपने युग के महान वैज्ञानिक थे। पृथ्वी को समतल बनाने वाले तो बहुत बाद के कुछ यूनानी विद्वान थे। बाइबल ने कभी नहीं कहा कि पृथ्वी समतल है। यशाया के पुस्तक 40 अध्याय उसके 22 पद में पृथ्वी को गोल कहा गया है। दानियल भी एक विलक्षण प्रतिभा था। नबूकदनेस्सर की परीक्षा में वह ऊपर ही रहा। पौलुस भी बौद्धिक स्तर पर सबसे ऊंचा था। ये सब अपने युग की शिक्षा में प्रवीण थे और मैं उन मंद बुद्धियों से ऊब जाता हूँ जो सोचते हैं कि बाइबल के लेखक अज्ञानी थे। दानियल भी एक अति बुद्धिमान युवक था और उसे उस युग की सर्वोच्च शिक्षा दी गई थी। आप उस युग की शिक्षा को कम ना आंकें। वह युग विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में बहुत ही आगे था। दानियल सब कुछ सीखेगा। अब हम देखेंगे दानियल एक उसके 5 पद में लिखा है, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। मेरे मित्रों, यह अन्य जातियों का भोजन था और उसमें अशुद्ध पशु भी थे। दानियल एक यहूदी था और मूसा की व्यवस्था का पालन करता था, जिसमें कुछ प्रकार का मांस, पशु, चिड़िये, मछलियां खाना उनके लिए मना था, इसलिए वह उन भोजन को नहीं खा सकता था। दानियल परमेश्वर का सच्चा भक्त रहने का प्रण करता है। दानियल के पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरियाह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशर, हनन्याह का सद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरियाह का नाम अबेदनगो रखा। खोजों के प्रधान ने उनके नाम बदल दिए। दानियल का नाम उसने बेलतशसर रखा, हनन्याह का सद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरियाह का नाम अबेदनगो रखा। मेरे विचार में इन चारों का बौद्धिक स्तर सबसे ऊंचा था। बेबीलोन के राजा को सर्वोच्च बुद्धि और बलिष्ठ शारीरिक पुरुषों की आवश्यकता थी। यहूदियों से ये 4 पुरुष अलग ही दिखाई दिए गए, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। यदि उनका आयु वर्ग एक ही था तो मेरे विचार में वे 17 वर्ष की आयु के लगभग थे, परंतु पुराने नियम के सर्वमान्य टीकाकार डॉक्टर गबलिन के अनुसार दानियल उस समय लगभग 14 वर्ष की आयु का था। डॉक्टर रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार दानियल उस समय 20 वर्ष का था, अतः इनकी आयु का रूढ़िवादी अनुमान 17 वर्ष उचित ही है। हम दानियल के पुस्तक 1 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। मेरे मित्रों, यह युवक एक अन्य जाति दरबार में परमेश्वर के लिए खड़ा है। सामान्य परिस्थितियों में तो यह प्राण घातक था। यहां पर दानियल नाम कमाना नहीं चाहता है। वह नबूकदनेस्सर को प्रभावित करना भी नहीं चाहता है। उसका निर्णय आज की सर्वव्यापी समझौते की नम्रता को प्रकट नहीं करता है, न ही आज की झूठी धारणा। मित्र कैसे जीतें और मनुष्यों को कैसे प्रभावित करें तथा सकारात्मक विचारों का सामर्थ्य। दानियल को अवसरवाद का ज्ञान नहीं था कि बेबीलोन में रहकर बेबीलोनियों का सा व्यवहार करें। दानियल इस संसार के सदृश नहीं था। वह अपने मन के नवीकरण द्वारा बदला हुआ व्यक्ति था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। मेरे मित्रों, दानियल और उसके मित्र परमेश्वर के उस शेष समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर एक युग में परमेश्वर बचाकर रखता है। इसी शेष समूह की चर्चा पौलुस 11 अध्याय उसके 5 पद में करता है, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। ये लोग राजा का भोजन खाना नहीं चाहते थे। वे बेबीलोन के भोजन का विरोध करेंगे और इन युवकों को बहकाने का बहुत प्रयास किया जाएगा कि उन्हें मन से और तन से बेबीलोन वासी बनाया जाए। उन्हें बेबीलोन वासियों का सा भोजन करना था। बेबीलोन वासियों की सी वेशभूषा पहनना था और उनकी मनोवृत्ति ही बेबीलोन वासियों की सी हो जाए। दानियल और उसके साथी मूसा की व्यवस्था के अधीन थे। परमेश्वर ने पुराने नियम में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 44 से 47 पद में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचारी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और मक्ष्य और अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया जाए। कुछ प्राणियों का मांस विशेष करके वर्जित था, जिनकी सूची लय व्यवस्था की पुस्तक में है। मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस ईश्वर भक्त इसराइलियों के लिए घृणित था। शायद दानियल और उसके साथी नाजीर थे, जिन्हें मदिरा पान की भी मनाही थी, क्योंकि गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे, वह ना दाख मधु और ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए चाहे हरी हो या सूखी। वे यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 11 पद के आदेशों का पालन कर रहे थे। दूर हो दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत खाओ, मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो। परंतु विश्वासियों के भोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 25 से 27 पद में लिखा है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। और पहला कुरिन्थियों के पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस ने लिखा है कि खाने न खाने से हम परमेश्वर का पक्ष ग्रहण नहीं करते, क्योंकि न तो खाने से हम अच्छे और न खाने से हम बुरे होते हैं। ये इब्रानी युवक मूसा की व्यवस्था वरन परमेश्वर के लिए खड़े थे। तब आगे लिखा है दानियल की पुस्तक 1 अध्याय के 10 पद में, खोजों के प्रधानों ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। मेरे मित्रों, दानियल अब तक सबका चहेता हो गया था और यह संयोगवश नहीं था। दानियल पर परमेश्वर का हाथ था, जैसे मिस्र में यूसुफ के साथ परमेश्वर था। आगे हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद में, तब दानियल ने उस मुखिया से जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। मेरे मित्रों, अब हम आगे देखते हैं, खोजों के प्रधान ने उन्हें भोजन खाने को विवश नहीं किया, परंतु उसने जान की जोखिम उठाई। वह शैतान और खाई के बीच था। वह दानियल से बहुत प्रसन्न था, परंतु कर भी क्या सकता था। दानियल 1:13 में लिखा है, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उन्हें परखने वाला मेलजर था, परंतु परमेश्वर ने उसके मन में दानियल के प्रति अनुग्रह से भर दिया था। लिखा है कि अशुद्ध भोजन से इनकार करने का निर्णय दानियल के मन से उत्पन्न हुआ था। मैं मसीही जीवन और संसार से अलगाव को नियमाधीन बनाने के विषय टिप्पणी करना चाहता हूँ। खाने पीने और आचरण के क्षेत्र में नियम पालन और संदिग्ध बातों को अनदेखा करने की मानसिकता प्रकट होती है। मुझे एक महिला का पत्र मिला जिसने प्रभु को ग्रहण करने के बाद एक पंथ की सदस्यता ले ली, जहां उसे बताया गया कि वह कुछ कर पाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी, अर्थात उसे कुछ करने की अनुमति है और कुछ की नहीं। पत्र लिखने का उद्देश्य था कि वह विधियों का पालन करके भी अशांत चित्त थी। कलिसिया के इतिहास में हम देखते हैं कि एक समय था जब कुछ बातें करने की अनिवार्यता थी और कुछ बातें न करने की विवशता थी। मेरे मित्रों, रोमी साम्राज्य के समय स्थापित मसीही मठ वास्तव में व्यभिचार के विरुद्ध स्थापित किए गए थे, परंतु शीघ्र ही मठ के भीतर का वातावरण बाहर से भी अधिक दूषित हो गया था। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 39 पद में प्रभु यीशु ने फरीसियों से कहा था कि वे कटोरे को बाहर से तो चमका देते हैं और भीतरी भाग गंदा रहता है। वे सफेदी की हुई कब्रें हैं जो भीतर से सड़ रही हैं। तीतुस 3 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस कहता है कि वस्तु स्थिति तो यह है कि नए जीवन का स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार होता है, न कि कर्मों के द्वारा। जीवन में पवित्रता पाने के लिए हमें पहले परमेश्वर से नया जीवन पाना है। हमारा जन्म ऊपर का अर्थात स्वर्ग का है। हम पद 8 में देखते हैं, दानियल ने अपने मन में ठान लिया। वह मन से सोचकर काम करता था। हमें भी ऐसा ही होना है। हम इस संसार के दास हैं। हम इस संसार से बाहर नहीं जा सकते। प्रभु यीशु ने कहा कि हम इस संसार में हैं, परंतु इस संसार के नहीं हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु यीशु कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अतः हम नियमों के अधीन नहीं रह सकते। हमारे मन में जीवन का उद्देश्य होना है। प्रभु यीशु ने कहा कि मन से ही जीवन के विषय प्रवाहित होते हैं, खाने पीने से नहीं। दानियल ने यह ठान लिया था कि वह परमेश्वर की विधि का पालन करेगा। यह उसकी गवाही थी। हम आगे पढ़ते हैं, दानियल 1 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। मेरे प्रियो, खोजों का प्रधान जो बेबीलोन में ही पला और बड़ा था, वह जानता था कि बेबीलोन में शरीर और बुद्धि के विकास के लिए यही भोजन आवश्यक है। अतः वह दानियल की विनती पर कुछ घबराने लगा, परंतु वह दानियल से अति प्रसन्न था, इसलिए उसने उन्हें 10 दिन की छूट दी। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर कुछ कार्य करता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। दानियल ने परमेश्वर की बातों को माना और तब परमेश्वर ने उसकी सहायता की। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जब हम सही निर्णय लेते हैं और परमेश्वर के प्रति हम खड़े होते हैं, तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हम आगे देखेंगे दानियल के बारे में, उसके मित्रों के बारे में, कि किस प्रकार परमेश्वर अंत के समय तक उनके संग संग रहा, उन कठिन पलों में भी। मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज हम भी दानियल के समान अपने जीवन में एक सही निर्णय लें, अर्थात परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखें और उसके लिए खड़े हों, ताकि हम भी उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान।